તારીખ 28/5/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 708, 709 અને 710 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 328. मात्र भी नहीं करनी चाहिए, कार्य तो नहीं करना चाहिए लेकिन इच्छा मात्र भी नहीं करनी चाहिए। पूरी योग्यता परिपक्वता आ जाए तब एक ऐसा कार्य करना चाहिए, वरना ये कार्य करना नहीं चाहिए। और बहुत करके अभी तक ऐसा ही वर्तन किया गया है। अभी 29 का आयु चल रहा है, 29 साल का ऐसा ही चला है। हमने कभी उपदेशक होकर के किसी को उपदेश नहीं दिया, किसी को मार्ग समझाया है लेकिन उपदेश नहीं दिया। क्या फर्क है इसमें? मार्ग समझाना वो तो आपस में सत्संग और चर्चा की बात होगी, और उपदेश देना हो तो गुरुपद की बात है, अपने दूसरे शिष्य बने अपने और इसके गुरु बने, ऐसी बात होगी। ऐसा हमने कभी नहीं किया। मार्ग का यत्किंचित स्वरूप किसी किसी को समझाया है, थोड़ा बहुत मार्ग का स्वरूप किसी किसी जीव को, मुमुक्षु को, जिज्ञासु को समझाया है, तथापि किसी को एक भी व्रत पचखान दिया नहीं है। किसी को ये नहीं दिया कि तुमको ये करना है, आज्ञा नहीं दी तुमको वो करना है, तुमको ये करना है, ये नहीं करना, विधि निषेध से कोई आज्ञा नहीं दी, न किसी को व्रत पचखान दिया है। अथवा तुम मेरे शिष्य हो और हम गुरु हैं, ऐसा प्रकार प्राय प्रदर्शित नहीं हुआ है, ऐसा न भाव हमको आया है, न ऐसा कोई प्रकार भी हमने प्रदर्शित किया है। कहने का हेतु यह है कि सर्वसंग परित्याग होने पर उस कार्य की प्रवृत्ति सहज स्वभाव से उदय में आए तो करना, ऐसी मात्र कल्पना है, ऐसा एक विचार है। ये भी एक कल्पना इतना जोर नहीं है, क्योंकि मुनि पद आ जाएगा तो भी शायद हम अंतर में लीन हो जाएंगे, उपदेश नहीं भी करें। इसलिए अभी जो कहने की का कोई हेतु है तो यही है कि सर्वसंग परित्याग मैंने मुनि दशा में कोई संग रहता नहीं है, सभी संग छोड़ के जंगल में चले जाने का रहता है। ऐसा होने पर ऐसा किया, ऐसा होने पर ऐसा सहज हमारी वितरागी दशा हो जाएगी, तो ऐसा होने पर उस कार्य की प्रवृत्ति, मैंने उपदेशक की प्रवृत्ति, निर्ग्रंथ गुरु की प्रवृत्ति जो उपदेश की है, सहज स्वभाव में उदय में आए तो, वो भी उसका कोई उदय होवे तो, वाणी का रूप का उदय हो, दूसरे का सुनने का उदय हो, ऐसा कोई सहज उदय हो तो, कोई दुकान लगानी है, ग्राहक को बुलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकी हमारी दुकान पर लग जावे तो अच्छा है, दूसरे कॉम्पिटिटर की दुकान नहीं चले तो अच्छा है, ऐसी खींचातानी वितराग मार्ग में जो सहज होता है, सहज करने की बात। तो सहज स्वभाव में ऐसा कोई उदय आए तो करना, उपदेश वगैरह, ऐसी अभी तो मात्र कल्पना है, ये कल्पना है, कह नहीं सकते कि उस वक्त हमारे परिणाम सर पूरा अंतर में लीन हो जाएगा, योग बनेगा नहीं बनेगा, कोई हमारा इतना जोर नहीं है, तीव्रता नहीं है इस विषय पर। मतलब उसका वास्तव में आग्रह नहीं है, इसलिए कल्पना लिखा है कि हमारा कोई आग्रह इसमें नहीं है कि ऐसा ही हो, उसका वास्तव में आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान प्रभाव है। ये तो एक दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा का विकल्प है और वितराग मार्ग की प्रभावना हुए, ज्ञान मार्ग की प्रभावना हुए उतनी बात है। इससे कभी कभी यह वृत्ति उद्भवित होती है, यही कारण से दूसरों की अनुकंपा देखकर कभी कभी ये विकल्प भी आ जाता है। अथवा अल्पांश में बहुत वृत्ति अंतर में है तथापि वह स्ववश है, बहुत अल्प अंश में हमारे अंतर में यह वृत्ति हृदय के एक कोने में पड़ी है कि दूसरों का भी कल्याण हो, फिर भी वो परवश मैंने कंट्रोल बार नहीं है, स्ववश मैंने हमारे कंट्रोल में है। इस प्रकार का जो राग है मार्ग का उद्योत करना, उस राग हमारे कंट्रोल में है, ये वृत्ति कंट्रोल बार भी नहीं चलती। हमारी धारणा के अनुसार सर्वसंग परित्यागादि हो तो हजारों मनुष्य मूल मार्ग को प्राप्त करें, और हजारों मनुष्य उस सन्मार्ग का आराधन करके सदगति को प्राप्त करें, ऐसा हमारे द्वारा होना संभव है। देखिए, इतनी संभावना देख करके भी वृत्ति को कितने स्वश रखते हैं, अपने बस में रखते हैं, अपना सामर्थ्य दिखाते हैं कि अगर हमारी धारणा के अनुसार सर्वसंग परित्याग आदि हो, हमारी तो धारणा है, अभिलाषा है कि हम मुनि बन जाएं, अपूर्व अवसर ऐसा कभी आए कि सर्व बंधन को तीक्ष्ण रूप से छेदन करके, तोड़ करके हम निग्रंथ भावलिंगी हो जावे, ऐसा हमारी धारणा है, ऐसी भावना भाई है, ऐसी धारणा के अनुकूल अगर हमारी दशा होगी तो ये बात अवश्य है कि हजारों मनुष्य का कल्याण हो सकता है हमारे निमित्त से। अभी ग्रस्त दशा में भी इनके वचनों ने इतना जादू किया है, इतना चमत्कार किया है कि हजारों मनुष्य इस वचनामृत के पीछे अनुयायी हो गए हैं। पूछेंगे कि आप कौन हैं, श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं कि नहीं, हम तो श्रीमद् राजचंद्र के अनुयायी हैं, ऐसे कहेंगे लोग, हम न दिगंबर है न हम श्वेतांबर हैं, ऐसा कहेंगे, क्योंकि संप्रदाय से वो अलग हो गए, संप्रदाय से उसका मेल नहीं खाता। तो उनका जो ये पंच महाभूत वाला देह तो नहीं रहा, लेकिन अक्षर देह रह गया, ये जो पत्र है वो अक्षर देह है, वैसे ही देह दिखने में आता है, आत्मा तो दिखने में नहीं आता, देह पर से भाव, देह की चेष्टा से जैसे भाव समझ में आता है, वैसे ही अक्षर देह से भाव समझ में आता है कि उनके क्या भाव थे। तो उस पर से ऐसा कोई चमत्कार हुआ है या इसकी वाणी में कोई ऐसा अतिशय है कि उसको समझाने वाले मिले नहीं मिले, लेकिन बहुतों को पढ़ करके ऐसा हुआ कि ये बात कोई मानने लायक है, समझने लायक है, उसकी गहराई में जाने लायक है। हजारों मनुष्य को चोट मारी है इस वाणी ने, स्वयं की उपस्थिति में, मैंने आपकी उपस्थिति में तो उतना लोग को आकर्षण नहीं हुआ है क्योंकि इनकी वाणी का इतना प्रचार नहीं था, लेकिन इनकी संस्था ने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो ग्रंथ है, करीब आज के जमाने में इसका लागत 100 रुपया से कम नहीं होगा, 20 रुपया तो करीब बाइंडिंग में जिल्द में चला जाता होगा, वो पूरा ग्रंथ 10 रुपया में देते हैं, 10 रुपया में बेचते हैं, और कई सालों से ऐसे बेचते हैं, हजारों ग्रंथ बेचते हैं। उतना प्रचार हुआ कि बहुत से लोगों के हाथ में गया और कईयों को ये चोट लगी है और वो इस लाइन में थोड़े बहुत अपनी योग्यता के अनुकूल विचार करने लगे हैं, और संप्रदाय के चक्कर में से बहुत लोग छूटे हैं, जाते ही नहीं, फिर अपने साधु के पास नहीं जाते, संप्रदाय में नहीं मिलते, ऐसा हुआ है। हम संख्या के हिसाब से देखे तो हमारी संख्या से, गुरुदेव के अनुयायियों की संख्या से आज भी श्रीमद् जी के अनुयायियों की संख्या अधिक है, ज्यादा हो गई, इतना आकर्षण हुआ है इनकी वाणी से, उपस्थिति नहीं है फिर भी इनकी वाणी से इतना आकर्षण हुआ है। हाँ, बहुत तत्व भरा है, तत्व बहुत भरा है। क्या कहते हैं कि हमारी धारणा के अनुसार सर्वसंग परित्याग हो तो हजारों मनुष्य मूल मार्ग को प्राप्त करें, और हजारों मनुष्य उन सन्मार्ग का आराधन करके सदगति को पंचम गति को प्राप्त करे, हजारों को मोक्ष मार्ग में आने का हो जाएगा, सम्यक दर्शन आदि हो जाएगा। अगर हमें मुनि दशा आ गई तो इतने बड़े पैमाने में लोगों का कल्याण होने की संभावना है, ऐसा हमारा सामर्थ्य दिखने में आता है। जब धंधा व्यापार करते करते गृहस्थी चलाते चलाते इतनी बात लिख दी कि हजारों मनुष्य आकर्षित हो गए, तो अगर वो त्यागी हो जाते, निवृत्त हो जाते, मोक्ष मार्ग में उतने आगे बढ़ जाते, तो कितना ज्ञान निर्मल होकर के वाणी का भी कितना प्रभाव हो जाता। गृहस्थ दशा में जो वाणी है इसका चमत्कार इतना है, तो मुनि दशा में आते तो ये वाणी का चमत्कार कितना हो जाता, ये एक अंदाजा लगाने का विषय है। इतना ज्ञान प्रभाव संयम में है, अनुकंपा भी है और ज्ञान का भी प्रभाव है। हमारे संघ में अनेक जीव त्याग वृत्ति वाले हो जाए, ऐसा हमारे अंतर में त्याग है, हमारे अंग में त्याग है, ऐसा लिखा है गुजराती में, तो हमारे अंग में त्याग है। मैंने अगर हम मुनि दशा में आ जाएंगे तो इतना उपशम रस बाहर आ जाएगा अंग अंग में से कि दूसरे को त्याग वृत्ति हो जाएगी, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं दूसरे त्यागी भी हो जाएंगे, हमारे साथ मुनि भी हो जाएंगे। देखिए क्या अंदाजा है इनका, खुद का अंदाजा कितना है कि अगर हम मुनि दशा हमारे को आ गई तो अभी वो शांत गंभीर तो थे ही, लेकिन मुनि दशा के काल में उतनी शांतता, उतनी वितरागता अंग अंग में से दिखाई देगी कि दर्शन करने वाले को त्याग वृत्ति आ जाएगी कि हम भी इसके साथ चले निकले, हम भी इसके संग में रह जाए, हमको इसका संग छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे हमें ये सत्संग नहीं छोड़ना है, ऐसे बहुतों को हो जाएगा। ऐसा कहते हैं, ऐसा हमारे अंग में त्याग है, यद्यपि धर्म स्थापित करने का मान बड़ा है। हम जानते हैं कि अगर कोई धर्म की स्थापना करने वाला कोई समर्थ पुरुष निकलता है तो इस समर्थ पुरुष को मान भी बहुत मिलता है, ये जानते हैं, लेकिन उसकी स्पृहा से भी कदाचित ऐसी वृत्ति रहे, ये मानादिक के कारण से उपदेशक होने की वृत्ति हमको रहे, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा को बहुत बार कस करके देखने से उसकी संभावना वर्तमान दशा में कमी दिखती है, वर्तमान में ऐसा मान के कारण वृत्ति उपदेशक की हुई है, विकल्प आता है, सो बात हमारे लिए नहीं है। गुजराती में तो ऐसा लिखा है कि हमें हमारा आत्मा ने तावी जोयो छे, तावी मैंने क्या, ओ कुछ कड़ी परीक्षा करें, क्या हम बोलते हैं कड़ी परीक्षा को, गुजराती में एक शब्द है, जैसे आपका कोई परीक्षा करनी है तो कड़ी परीक्षा कर, तो बोले हमने तावी जोया से हमारा से
हैं,
हाँ अग्नि परीक्षा को मैंने तावी जोया, ठीक है ठीक है, अग्नि परीक्षा में ज्यादा बैठता है क्योंकि तप्तायमान हो गया, कैसे कोई गर्म हो जाए वहां तक उसको परीक्षा करें, उसको तावी जोया ऐसा कहते हैं। अग्नि परीक्षा हमारे परीक्षा हमने बहुत बार करके देखने से, हमारे परिणाम को देखने से, उसकी मैंने मानादक की संभावना, मानवृत्ति की संभावना वर्तमान दशा में कमी दिखती है, ये मान के लिए हमको उपदेशक होना है, वो बात हमारे में बिल्कुल नहीं है। और किंचित सत्ता में रही होगी, देखिए उदय में तो नहीं है, लेकिन योग्यता में रही होगी, या मान के परमाणु जो है वो किंचित सत्ता में रहा होगा। जब परमाणु सत्ता में रहता है तो योग्यता भी सत्ता में रहती है, उदय आता है तो भाव भी उदयमान हो जाता है थोड़ा बहुत, और किंचित सत्ता में रही होगी तो वह क्षीण हो जाएगी। ये मान आदि की वृत्ति हमें कमजोर नहीं करेगी या हमको गिराएगी नहीं, वो क्षीण हो जाएगी, स्वयं वो क्षीण हो जाएगी, नाश हो जाएगी, ऐसा अवश्य भाषित होता है। देखिए कितना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना है कि ये मान की वृत्ति हमें परेशान करे वो बात नहीं है, हम इतने मजबूत हैं, हमारी ताकत इतनी है कि मान वृत्ति को उद्भव नहीं होने देंगे, अगर उद्भव होंगी तो भी उसको क्षीण कर डालेंगे, उसका विजय नहीं होगा, हमारा विजय होगा। ये अंतरंग परीक्षा है, वो तो परीक्षा जय में आ जाएंगे, हम परीक्षा से हारेंगे
नहीं,
ऐसा भाषित होता है। क्योंकि यथा योग्यता के बिना देह छूट जाए वैसी दृढ़ कल्पना हो तो भी मार्ग का उपदेश नहीं करना, ऐसा आत्मनिश्चय नित्य रहता है, भले ही आयुष्य पूरा हो जाए, ऐसी कल्पना में भले ही आयुष्य पूरा हो जाए लेकिन यथा योग्यता के बिना, मैंने सर्वसंग परित्याग की दशा हुए बिना हमें कोई मार्ग का उपदेश करना नहीं है, ऐसा आत्मनिश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय हमेशा रहता है, नित्य रहता है, मैंने हमेशा रहता है। एक इस बलवान कारण से परिग्रह आदि का त्याग करने का विचार रहा करता है, भगवान का तीर्थंकर देव का मार्ग का उद्योग करने का बलवान कारण है। हजारों मनुष्यों का आत्महित हो जाए ऐसा एक बलवान कारण होने से वर्तमान परिग्रह वाली दशा का त्याग करने का बार बार विचार आता है कि ये छोड़ देना चाहिए, व्यापार धंधा छोड़ देना चाहिए, निवृत्ति ले लेनी चाहिए, ऐसा विचार आता है, बार बार आता है, त्याग करने का विचार रहा करता है। मेरे मन में ऐसा रहता है कि विदुप्त धर्म प्रकाशित या स्थापित करना हो तो मेरी वर्तमान दशा भी यथा योग्य है, क्या, क्योंकि वहां तो गृहस्थी लोग भी उपदेशक होते हैं, गुरु होते हैं, किसी को इसमें आपत्ति नहीं है। विदुप्त धर्म में जो समाज है उस संप्रदाय में गृहस्थी गुरु होते हैं तो किसी को, परिग्रहवंत गुरु होते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मन में ये नहीं होता कि ये क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है, ऐसा बात नहीं रहती है। लेकिन जैन मार्ग में ये बात चलने वाली नहीं है, ऐसा कहते हैं तो वो तो मेरी स्थिति है ही, ऐसा मार्ग चलाना हो तो अभी चला दो, इसका मतलब ये है कि कोई वेदोक्त स्तर का मार्ग चलाना हो तो अभी चला सकता हूँ, तो इसी योग्यता में संभव है, सामर्थ्य है ही अभी भी। परंतु जिनोक्त मार्ग स्थापित करना हो, ये जिनेन्द्र का मार्ग है, ये अन्यों का मार्ग नहीं है, ये तो तीर्थंकर का मार्ग है, उसमें यथा योग्यता बिना मार्ग चलाना मैं उचित नहीं समझता। मार्ग चलाने वाले को बहुत विचक्षणता होनी चाहिए, बहुत सामर्थ्य होनी चाहिए और बाहर में परिग्रह आदि कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं, जिससे किसी को विरोधाभास होवे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। परंतु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अभी तक उतनी योग्यता नहीं है, मैंने सर्वसंग परित्याग हुआ होवे ऐसी योग्यता मेरी नहीं है, फिर भी दूसरों से विशेष योग्यता है ऐसा लगता है, ऐसी योग्यता नहीं है। लेकिन अभी जो समाज में कोई त्यागी व्रति विद्वान कोई भी है, इससे से तो कोई विशेष योग्यता है, इसलिए वो मार्ग समझाते थे, लेकिन उपदेशक के स्वांग में आकर के मार्ग कभी नहीं समझाया। ये व्यवहार धर्म या व्यवहार मार्ग व्यवहार दिन शासन के उद्योग के विषय में अपने जो विचार हैं वो विचार उन्होंने यहाँ इस पत्र में रखा है। अब जो ये 709 पत्र है ये कोई इनकी नौंद है ऐसा दिखता है, किसी के ऊपर पत्र नहीं दिखता है लेकिन कुछ नौंद है ऐसा दिखता है। क्यों तो संबोधन करते हैं कि हे नाथ, मैंने हे प्रभु वो तीर्थंकर देव को भगवान को प्रार्थना करते हैं कि या तो धर्म उन्नति करने की इच्छा सहजता से शांत हो जाओ। ये विकल्प आता है कि आपके मार्ग की उन्नति मैं करूं, मेरे में थोड़ा बहुत सामर्थ्य प्रकट है विद्यमान है, तो ये बार बार विकल्प आता है लेकिन बाहर के जो परिस्थिति है समाज की वो अनुकूल नहीं है, इसलिए लगता है कि सहज शांत हो जाए। मैंने कृत्रिमता से मुझे दबानी भी नहीं है और न कृत्रिमता से मुझे इसकी प्रवृत्ति भी करनी है, सहजता से हो तो हो, तो या तो ये शांत हो जाए तो ठीक है सहज रूप से, या फिर वह इच्छा अवश्य कार्य रूप ही हो जाओ, या तो ही मैं ये दशा में आ जाऊँ सर्वसंग परित्याग से, या ऐसा कार्य होने लग जाओ, या तो ये वृत्ति शांत हो जाओ या ये वृत्ति का कोई कार्यान्वित बना हो जाओ। अवश्य कार्य रूप होना बहुत दुष्कर दिखाई देता है, वर्तमान परिस्थिति 95 साल की पहले की जो समाज की स्थिति है उसमें ये धर्म की उन्नति करने का कार्य बहुत दुष्कर दिखाई देता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में मतभेद बहुत है, सारी समाज में छोटी छोटी बातों में भी मतभेद बहुत है। हाँ बिल्कुल नग्न चित्र है, छोटी छोटी बातों में बहुत मतभेद है। हाँ और उनकी जड़ें बहुत गहरी है, ये मतभेद तो छोटा छोटा दिखता है लेकिन इसका मूल जो है बहुत गहरा है। देखो क्या लिखा है, ऊपर से देखेंगे ये तो छोटी छोटी बात है लेकिन मूल में देखे तो ऐसे मतभेद करने वाले के जो अभिप्राय है इसकी योग्यता है ये बहुत खराब है, उसको ठीक होना आसान नहीं है, ठिकाने पे आना कोई आसान नहीं है, ऐसी बात है। मूल मार्ग से लोग लाखों कोस दूर है, कितने दूर है 95 साल पहले की बात करते हैं कि मूल मार्ग से सारी समाज कितनी दूर है, लाखों गांव कोस, मैंने गांव दो गांव का एक कोस होता है, लाखों कोस दूर है, इतने दूर चले गए, कहां भगवान का तीर्थंकर का मार्ग और कहां वर्तमान समाज, लाखों कोसों का अंतर हो गया है। इतना ही नहीं परंतु मूल मार्ग की जिज्ञासा उन लोगों में जगानी हो तो भी दीर्घ काल का परिचय होने पर भी उसका जगना कठिन हो, आसान नहीं लेकिन कठिन हो, ऐसी उनकी दुराग्रह आदि से जड़ प्रधान दशा हो गई है। क्या कहते हैं, इधर थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग किया है, जड़ प्रधान दशा हो गई है। मैंने मार्ग का उद्योत होवे ऐसी कार्य पद्धति शुरू करें हम तो उसकी शुरुआत करने में इतने दुराग्रह वाले लोग आ जाएंगे सामने कि जैसे जड़ हो। मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि वो उसको बालने में कोई आसानी हो गई, मैंने कड़क चीज हो बढ़ती नहीं है, मुलायम हो तो बढ़ जाती है, तो ऐसा दिखता है कि बहुत दुराग्रह से तीव्र कठिन जड़ जैसी दशा हो गई है। वो समझते नहीं और समझने चाहते भी नहीं। जो समझना चाहते हैं उसको समझाना आसान है, लेकिन जो समझना चाहते ही नहीं उसको समझाना आसान नहीं, वो समझ ही नहीं, समझेंगे ही नहीं वो, क्यों? वो तो ऐसा अभिप्राय लेकर के बैठे कि हमको इनकी कोई बात समझनी नहीं है, चाहे अच्छी बात है तो भी हमें विरोध करना है, अच्छी नहीं है तो भी हमें तो विरोध ही करना है, विरोध के सिवा कुछ नहीं करना है, ऐसा एक अभिप्राय लेकर के जब बैठ जाते हैं तो ये जड़ प्रधान दशा उसको कहने में आई है। ये ऐसे दुराग्रह को क्या कहते हैं? जड़ता कहते हैं, तो ऐसे जड़ हो जाते हैं। अपने नोंद करते हैं अपनी डायरी में, तो उन्नति कैसे, किस क्रम से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस पद्धति से करना चाहिए, इसके साधन कैसे होने चाहिए, इसकी स्मृति करके मैं नोट कर लेता हूँ कि बोध बीज के स्वरूप का निरूपण मूल मार्ग के अनुसार जगह जगह हो। क्या कहा? बोध बीज, स्वरूप निश्चय होना ये बोध बीज है, आत्मज्ञान है वो बोध है आत्मा का, पर इसका वो बीज जो है वो स्वरूप निश्चय है। क्या लिखा है पद्धति का विचार जब किया है उन्होंने, वो बात कही है पात्रता, उत्कृष्ट पात्रता में ये संभव है। बोध बीज कब मिलता है? उत्कृष्ट पात्रता में मिलता है। तो इस पात्रता का स्वरूप और आत्मस्वरूप का बोध होवे ऐसा कोई बीज की भूमिका तैयार हो, ऐसा निरूपण मूल मार्ग के अनुसार, मूल मार्ग के अनुसार, दूसरा मार्ग नहीं निकालना है मुझे, जो मूल मार्ग अनादि से चलता है सनातन उसी के अनुसार जगह जगह हो, अनेक जगह पर ये बात होवे तो अच्छा है, एक जगह नहीं जगह जगह पर ही हो, क्योंकि समाज बड़ी है, क्षेत्र भी बड़ा है, तो जगह जगह ये बात चलनी चाहिए। जगह जगह मतभेद से कुछ भी कल्याण नहीं है, यह बात फैले। क्या बात फैले? कि मतभेद से कुछ भी कल्याण नहीं होगा या अकल्याण हो जाएगा, मतभेद से अकल्याण हो जाएगा, इसलिए जो सन्मार्ग है उसी सन्मार्ग पर लगने के लिए, उसी सन्मार्ग पर आने के लिए एक ही प्रकार का मत हो, विभिन्न मत नहीं हो, उसमें अकल्याण होता है। कल्याण के लिए तो हम एक मत में आ जाएं जिसमें कल्याण हो, कहीं भी किसी को अकल्याण होने का सीधा या परंपरा से कोई कारण नहीं हो, कोई निमित्त नहीं हो, सभी को कल्याण का सीधा ही निमित्त हो, ऐसी व्यवस्था हमें प्रबंध करना चाहिए। मतभेद में रहने से क्या है कि ताकत टूटती है समाज की, समाज की ताकत टूट जाती है। तो कहते हैं कि जगह जगह मतभेद से कुछ भी कल्याण नहीं है, यह बात फैले, ऐसा एक वातावरण हो कि सबों को ये ध्यान रहे कि हमें मतभेद हो तो मिटा देना है, साथ में बैठकर मतभेद हो तो मिटा देना है, ऐसा। हाँ ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसा प्रचार होना चाहिए कि हमारे आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार का और सबका कल्याण हो। प्रत्यक्ष सदगुरु की आज्ञा से धर्म है, यह बात ध्यान में आए। ये अनुशासन की बात क्या? ऐसा कब हो सकता है? क्योंकि हर एक को अपनी समझ का अहम रहता है कि मेरा तो ये अभिप्राय है, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं तो आप कहते हैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो जो मेरी बुद्धि में आए वो मैं मानूंगा, ऐसा नहीं है। अनुशासन में रहना है। जो ज्ञानी है, सदगुरु है, वो जो कहे वो सही है, हम कहे वो सही नहीं है। ऐसे ज्ञानी के अनुशासन में रहना, जब ये संभव है कि आपस के मतभेद है वो मनभेद तक पहुंचे नहीं। हाँ, वो तो जानते बहुत, इनका तो विचार की जो स्तर था बहुत विशाल था, मैंने बुद्धिमती जो है बहुत विशाल बुद्धि के धारक थे, वो काफी जानते थे कि कैसे शासन चलाना चाहिए। प्रत्यक्ष सदगुरु की आज्ञा से धर्म है, यह बात ध्यान में आए, सभी को ध्यान में ये बात आना चाहिए कि ज्ञानी की आज्ञा में रहना चाहिए, मुमुक्षुओं को ज्ञानी की आज्ञा से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बात तो सबों के ध्यान में होनी ही चाहिए। द्रव्यानुयोग अर्थात आत्मविद्या का प्रकाश हो। देखो क्या लिया, सबसे पहले लोग कहते हैं कि गुरुदेव ने तो द्रव्यानुयोग का बहुत प्रकाश किया, लेकिन श्रीमद जी ने नहीं किया। अब श्रीमद जी क्या कहते हैं कि अगर मैं समष्टिगत समाज के समाज समष्टि मैंने समाज समष्टिगत उपदेश का कोई कार्य हाथ में लेऊं तो मैं द्रव्यानुयोग का प्रकाश करूंगा, अध्यात्म विद्या का आत्मविद्या का प्रकाश करूंगा। तो अपना अभिप्राय स्पष्ट किया है कि नहीं किया है, स्पष्ट कर दिया है बात को। और त्याग वैराग्य की विशेषता पूर्वक साधु विचरे, जो भी त्यागी है जो भी साधु है उसमें त्याग वैराग्य की इतनी विशेषता होनी चाहिए कि किसी को तीर्थंकर के मार्ग का अवर्णवाद बोलने का अवकाश नहीं मिले। जब ये त्याग वैराग्य में च्युत होते हैं या त्यागी होकर के भी उसका प्रतिपालन ठीक तरह से शास्त्र के आज्ञा अनुकूल नहीं करते हैं तो लोगों को ये अवर्णवाद बोलने का प्रसंग आता है कि देखिए दीक्षा तो ली है लेकिन ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। चुस्त रूप से अगर त्यागी हुआ प्रतिज्ञा ली तो चुस्त रूप से उसका प्रतिपालन करना चाहिए। हाँ, ये साधु के लिए है, ये बात साधु के लिए। मुमुक्षुओं को अपनी जगह में रहना है, किसी भी सत्पुरुष के की विरुद्धता हमारे से नहीं हो, ज्ञानी की विराधना हमारे से नहीं हो, सीधा रूप से भी नहीं हो, परंपरा से भी नहीं हो, इनकी आज्ञा को हमारे अनुकूल में रहना है, ये बात मुमुक्षु का धर्म है। नव तत्व प्रकाश, ये तत्व दृष्टि की बात लिया है। नव तत्व में जो भी तत्व दृष्टि है उस तत्व दृष्टि का प्रकाश करें हम। जगत में नव तत्व में तो सभी उपदेश आ ही जाता है लेकिन तत्व के प्रधान दृष्टि से इनका प्रकाश करें ऐसे। और साधु धर्म प्रकाश, साधु कैसे होने चाहिए, तीर्थंकर देव के मार्ग में विचरने वाले जो साधु हैं वो कैसे होने चाहिए इसका प्रकाश करना चाहिए अच्छी तरह, जिससे कोई साधु दशा के जो प्रवृत्ति है इससे बाहर प्रवृत्ति नहीं करे। ऐसे श्रावक धर्म प्रकाश, श्रावक कैसे होने चाहिए, तीर्थंकर के मार्ग में चलने वाले श्रावक कैसे होने चाहिए, आगार धर्म और अणगार धर्म दोनों का अच्छी तरह प्रकाश करना चाहिए। और विचार मैंने इसके जो विचार की भूमिका है, पात्रता की भूमिका है, उसको भी अच्छी तरह हम समझे कि विचार का स्तर कहाँ तक है, वैचारिक विषय कहाँ तक है, प्रयोग का विषय कहाँ तक है, इस बात का हम भी अच्छी तरह विचार करें। और अनेक जीवों को प्राप्ति होवे। मैंने कोई संप्रदाय बुद्धि से हम ऐसी बाड़ा बंदी नहीं करे कि दूसरे जो आए हैं उसको मना करें, या दूसरे आए हैं उसको हम ऐसे कहें हम तो पुराने आप तो नए हैं, हम तो पुराने हैं आप तो नए हैं, हम पुराने हैं इसलिए हम तो दिगंबर हो गए, या हमारे पिताजी इसमें थे इसलिए हम दिगंबर हो गए, आप तो अभी श्वेतांबर रहे हैं, मैंने भले ही 5-7 साल हो गया फिर भी हम आपको श्वेतांबर गिनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनेक जीवों को प्राप्ति हो, कोई भी आता हो कहीं से भी आता हो, नए को तो ज्यादा आदर देना चाहिए, नए आने वाले को कभी भी धक्का देना नहीं चाहिए या उसको ठेस पहुंचे ऐसा कोई बात करना नहीं चाहिए। हाँ देखिए नए में कैसे होते हैं, नए भी कैसे होते हैं, तो इस मार्ग में ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो पुराने होते हैं वो अच्छे होते हैं और नए होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मार नाप नहीं निकलता है। ये तो नए आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और पुराने वाले पीछे रह जाते हैं, हमारे समाज में ये बात हो गई है कि जो नए आते हैं उनको स्वाध्याय की वृत्ति ज्यादा रहती है, पुराने वाले को स्वाध्याय की रुचि ही छूट गई है, ऐसा दिखने में आता है, स्वाध्याय ही नहीं करते, किताब घर में आ लगाते अलमारी में रख देते हैं, हाँ शोकेस के एक पीस बन जाता है किताब तो, क्योंकि हम तो जिल्द भी अच्छे अच्छे करते हैं तो हमारे शोकेस में वो अच्छी दिखती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका स्वाध्याय होना चाहिए। लेकिन जैसा जैसा समय गुजरता जा रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि जो भी पुराने हो गए उनको ऐसा लगता है ये सब हम जानते हैं, हमको पता है, हमको सब मालूम है, हम जानते हैं, तो उनकी रुचि जो स्वाध्याय की है वो मिट गई है। नए नए आते हैं उनको चोट लगती है कि अच्छा ऐसी बड़ी बात है, ऐसी अमूल्य चीज है, तो उनको स्वाध्याय की रुचि बढ़ जाती है, उसका शास्त्र स्वाध्याय तत्व ज्ञान का अभ्यास भी अच्छा रहता है। हाँ मैंने कितने अंतर मंथन में से निकले होंगे टुकड़े, भले ही 2 शब्द के 1 शब्द के हो 2 शब्द के हो 3 शब्द के हो, लेकिन सूत्र जैसी बात है कि मार्ग की उन्नति के साधन जो हैं उसमें ये सभी बातों का अच्छी तरह संभाल होना चाहिए। अगर इन बातों को हम नहीं संभालेंगे तो मार्ग की उन्नति होना संभव नहीं है, ये बात साफ। अब है 710 नंबर का जो है पत्रांक, वो भी निवृत्ति क्षेत्र में अपने को एक डायरी का नोंद जैसा ही दिखता है, किसी को लिखा हुआ नहीं दिखता है, पद्धति देख करके ऐसा दिखता है कि ये कोई अपने जो विचार है उसके नोंद किया, बहुत सी बातें लिखी हुई। आत्मा सच्चिदानंद दो जगह लिखा है, आत्मा सच्चिदानंद गुजराती प्रति में एक और गुजराती भाषा में एक और नागरिक लिपि में लिखा है। ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक सच्चिदानंद ऐसा मैं आत्मा एक हूँ ऐसा विचार करना और ध्यान करना, कैसे अपना स्वरूप का ध्यान करना, कैसा अपना स्वरूप है कि एक अभेद हूँ मैं और एक अभेद होकर के भी ज्ञान अपेक्षा से सर्व पदार्थों में व्यापक हो जाऊं और ज्ञान होवे, ऐसा मेरा ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय अपने क्षेत्र से बाहर कभी जाती नहीं है, लेकिन जानने की अपेक्षा से ये बात कहा। सर्वव्यापक केवल ज्ञान का ये विशेषण है और केवल ज्ञान के सामर्थ्य का भी ये विशेषण है। वो कई शास्त्रों में आता है, आप भगवान आप तो सर्वव्यापक है। यहाँ से ये लोग, इन लोगों ने ये परम ब्रह्म सर्वव्यापक है क्षेत्र से ऐसा ले लिया है। क्षेत्र से नहीं है, सर्वव्यापकता आत्मा की क्षेत्र से नहीं होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ज्ञान अपेक्षा से ऐसा अपेक्षा खोल करके लिखा है। ये मर्यादित बात है, क्षेत्र से और दूसरे गुणों से कहीं भी व्याप्ति होती ही नहीं है। लेकिन ज्ञान लोकालोक को जानता है, जानता है उतना ही नहीं है, जैसे व्याप व्यापक होकर जाने तो कितना जाने उतना जानता है, ऐसा दिखाने के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है। वास्तव में ज्ञान की व्याप्ति ना होती नहीं है, लेकिन जानकारी उतनी हो जाती है कि मानो एक परमाणु हो और असंख्य योजन दूर हो अपने आत्मा से, केवल ज्ञानी की आत्मा से एक परमाणु असंख्य योजन दूर पड़ा हो तो उसके अनंत गुण, उसके अनंत गुण की अनंत अनंत प्रत्येक पर्याय, गुण की प्रत्येक पर्याय और उस पर्याय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, उसको केवल ज्ञान जान लेता है। तो कैसे जाना कि मानो के जैसे उसमें व्याप व्यापक होकर प्रवेश कर लिया और जान लिया, इसके भीतर में जाकर के प्रवेश करके जैसे जान लिया हो, इतना स्पष्ट जानता है, इसलिए उसको व्यापकता का एक आरोप हो सकता है उस पर। ये आरोपित कथन है, ऐसा विशेषण आरोपित विशेषण से उनको कहते हैं कि ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक सचित आनंद, मेरी सत्ता, मेरा चैतन्य स्वभाव और मेरा आनंद स्वभाव, ऐसा मैं एक आत्मा हूँ, एक आत्मा हूँ, मेरे में द्वैत नहीं है। इतना कहकर के भी मेरे में द्वैत दो रूपणा नहीं है, एक अभेद अखंड रूप में हूँ। हाँ, वेदांत में ये बात आती है, एको हम अद्वैत ब्रह्म ऐसा कहते हैं। कैसे कहते हैं? अद्वैत ब्रह्म कहते हैं। वहाँ अभेदता का भी एक अभिप्राय है, भेद वाला का भी एक अभिप्राय है और भेदाभेद वाला का भी अभिप्राय है। इसलिए सरस्वती चंद्र पढ़ा होगा, उसको ये मालूम होगा। पढ़ा है सरस्वती चंद्र? नहीं, वो तो गुजराती साहित्य का बहुत बड़ा ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है। ये गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी ने लिखा है। ये सूर्य राम मनसुख राम सूर्य राम त्रिपाठी ने इनके कजिन हैं, सभी उनके परिवार में से बड़े बड़े विद्वान हुए। ये गोवर्धन राम करके बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने चार भाग लिखे हैं। सरस्वती चंद्र नाम का एक नॉवेल लिखा है, क्या कहते हैं नॉवेल को, कहते हैं उपन्यास लिखा है। तो बड़ा उपन्यास है, छोटा नहीं है, चार वॉल्यूम। उसमें सब चीज को कवर कर दिया है, राजनीति को, गृहस्थी को, धर्म को, त्याग को। सरस्वती चंद्र त्याग कर लेता है, घर का त्याग करके निकल जाता है, वो किसी कोई सन्यासी के आश्रम में जाता है। तो एक सारा प्रकरण तो संस्कृत में लिखा है, उपन्यास गुजराती भाषा का है, लेकिन एक प्रकरण उसने संस्कृत में लिखा है। तो वही संस्कृत का बड़ा विद्वान थे, तो उसमें द्वैता अद्वैत विवरण ऐसा करके ये प्रकरण है। उसमें द्वैत मत वेदांत में कैसा है, अद्वैत मत कैसा है, द्वैता अद्वैत मत कैसा है, सबकी परिचर्चा की है, संस्कृत में किया है। फिर इसका गुजराती भी उसने लिख दिया है फुट नोट में, लेकिन सारा चैप्टर है वो संस्कृत में लिखा है। अपने कॉलेजों में जो आर्ट्स के कॉलेज में उसके कोर्स में चलता है, एक का मतलब यही है, अद्वैत ब्रह्म कहते हैं। ऐसा विचार करना, ऐसा ध्यान करना, क्योंकि द्वैत में एकाग्रता नहीं हो सकती, जो ज्ञान के विषय में दो पना आता है, जहाँ अनेक पना आता है वहां तो हो ही नहीं सकती, लेकिन द्वैत पने में भी एकाग्रता नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा विचारना और ऐसा ध्यान करना, निर्मल, अत्यंत निर्मल, परम शुद्ध, चैतन्य घन, प्रगट आत्मस्वरूप है। मैं मेरे सन्मुख जब होता हूं तब मुझे ऐसा लगता है या ऐसा अनुभव होता है कि मैं निर्मल हूं, निर्मल नहीं अत्यंत निर्मल हूं। मैंने तीन में मेरे में मलिनता का प्रवेश नहीं हुआ है, न मलिनता का स्पर्श भी हुआ है। देखिए, इस परिभ्रमण करने वाला संसारी जीव है, उसने अधिक काल तो निगोद में ही बिताया है, अनंत काल तो निगोद में ही बिताया है, क्योंकि त्रस्त पर्याय का काल ही कम है, ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर है, फिर तो निगोद में चला जाता है, पर प्रचुर कषाय कलंक में वहां अनंत काल रहना होता है। निगोद मैंने क्या, प्रचुर कषाय में रहना, फिर भी मेरी आत्मा में ये कषाय की मलिनता का स्पर्श भी हुआ नहीं, ऐसा मेरा निर्मल, परिपूर्ण निर्मल, अत्यंत निर्मल, बेहद निर्मल है, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसा असीम निर्मल हूं मैं, परम शुद्ध हूं, उत्कृष्ट शुद्ध हूं और चैतन्य का घन हूं, चैतन्य का निविड़ पिंड हूं। इसमें किसी का प्रेश होने का, स्पर्श होने का भी गुंजाइश नहीं है। ये कारण सुत पर्याय का विषय चर्चा में चलता है तो इस पर एक दृष्टांत है, ये सीता जी के जो स्वयं क्या बोलते हैं, स्वयंवर का एक दृष्टांत है। सीता जी का स्वयंवर हुआ तो उसके पिताजी ने जब स्वयंवर की रचना की तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया कि जो भी समर्थ होंगे मेरी कन्या उसके साथ विवाह करेंगे। तो उसने एक वो भी, उसको तो ये काल ही था, मंत्र तंत्र का ऐसा काल था, तो उस वक्त तो ये बेच है ना, हनुमान जी वगैरह तो ये यही थे जो मंत्र तंत्र ज्यादा करते हैं मनुष्य, वैसे आकाशगामी ने विद्यान रावण वगैरह ये सब ऐसे ही आकाशगामी होते थे, मनुष्य होते हुए भी ऐसे विद्या को साधते थे। तो एक ऐसा है विद्याधर, हाँ, विद्या को धारण करने वाले विद्याधर, मंत्र तंत्र के विद्याओं का बहुत प्रचार था और बहुत मनुष्य विद्याधर होते थे इस वक्त। तो ऐसा एक विद्या से साधित धनुष को रख दिया, वो इतना इसके अगल बगल में करंट रहता था कि कोई असमर्थ मनुष्य उसके पास जावे तो जैसे बिजली का करंट से कोई उसको धक्का मार दे, फेंक दे, ऐसे बहुत से राजाओं ने तो नजदीक भी नहीं जा सके, कितने तो नजदीक भी नहीं पहुंचे और कितने स्पर्श करने को गए तो इतना करंट लगा वो उड़ करके पड़ गया, फेंक दिया उसको। तो ये एक इतना सामर्थ्य वाला पदार्थ है, चैतन्य घन कहते हैं ना, परम शुद्ध, कि उसके सिर्फ वर्तमान में, वर्तमान समय, एक समय, वर्तमान समय कितना होता है, एक समय की विद्यमानता में उतना करंट है कि उसके सन्मुख हो गए, स्पर्श तो हो ही नहीं सकता त्रिकाली ध्रुव का, तो ध्रुव का स्पर्श उत्पाद नहीं कर सकता क्योंकि उत्पाद मिट जाए फिर तो ये उत्पाद होने वाला अगर सन्मुख होता है पर्याय तो उसमें उतना करंट लगता है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सामर्थ्य कितना ये दिखाने का अभिप्राय है, काल पर्याय दिखने को दिखाने का यही अभिप्राय है कि सामर्थ्य कितनी, आत्म पदार्थ में सामर्थ्य कितनी कि एक समय की वर्तमान विद्यमानता के सन्मुख होने वाला उपयोग में मति ज्ञान आदि आवरण फट जाता है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, एक समय में हो जाती है, दूसरा समय नहीं लगता, इतना करंट है इसमें, वस्तु कितनी महान होगी। ऐसा दिखाने के लिए उस भेद प्रभेद को दिखाया है, वो भी उसको सामर्थ्य दिखाने के हैं। भेद प्रभेद का दिखाने का प्रयोजन भी उतना ही है, उसमें उतना ही न्याय है, भेद दिखाने का न्याय नहीं है उसमें, कि अगर एक अंश में उतना सामर्थ्य तो पूरी वस्तु में कितना सामर्थ्य, ये देख लो। जैसे कोई अनुकूलता मिटाने के लिए मजदूरी करता है, धंधा व्यापार 24 घंटा, लेकिन कहते हैं कि तेरे विकारी परिणाम अगर शुभ होंगे ना तो इंद्र की दौलत मिल सकती है। कितनी? ये विकारी परिणाम का फल है, इंद्र की जो वैभव है वो किसका फल है? विकारी परिणाम का फल है। विकार में उतना सामर्थ्य है, अगर मंद कषाय हुआ तो इंद्र का वैभव मिलता है, और तीव्र हो तो सातवें नारक में या निगोद में चले जा सकता हो, या एक अंश शुद्ध होवे, मुमुक्षु की भूमिका में, निर्णय की भूमिका में गर्भित शुद्धता बीज बोने का होवे, तो उसमें निर्वाण पद की सिक्योरिटी, निर्वाण पद का रिजर्वेशन इसमें हो जाता है। ऐसा वहां इतना सामर्थ्य है, उसके नजदीक जाने में उतना सामर्थ्य, वस्तु का सामर्थ्य का तो कोई हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। ये ज्ञान का विषय है, मन का विषय नहीं है तो वाणी का तो विषय होवे ही कहां से। ऐसा चैतन्य घन, घन मैंने कैसा घन है, ऐसा चैतन्य घन प्रगट आत्म स्वरूप है मेरी आत्मा, अत्यंत निर्मल परम शुद्ध चैतन्य घन और प्रगट आत्म स्वरूप है। लोग ये कहते हैं कि आत्मा प्रकट कहाँ है, उसको प्रकट करना है, प्रकट करना नहीं है। अरे प्रकट अप्रकट की अपेक्षा जिसको लागू ही नहीं होती, ऐसा है। कैसा है? तो प्रकट अप्रकट की अपेक्षा जिसको लागू नहीं होती, नित्य उद्योत स्वरूप है, नित्य उद्योत, छठी गाथा में वो बात किया, नित्य उद्योत है, उसका उद्योत कभी नया होता ऐसी वस्तु प्रकट पड़ी है, प्रकट रही है, ऐसा यहां नोंद किया है, अपने डायरी में ये नोंद कर लिया है। और अनुभव का बात अभी करेंगे कि मेरा अनुभव कैसा है और अनुभव को कैसे हम ग्रहण करें। अनुभव में वेदन, ये वेदन का विषय आएगा इधर, तो थोड़ा वेदन का विषय गहरा लगता है, लेकिन उनको बहुत अच्छी पद्धति से ये बात लिया, जो 15वीं गाथा में लिया है वही बात यहाँ एक पंक्ति में लिखी है।